घुमटसार जीव कांड की ओर। सिद्धम शुद्धम पणमीय जिनिंद वर्णेमि चंद मकलंकम गुणरयण भूषणुदयम जीवस्य पर्वणम गोचम। जीव द्रव्य की प्ररूपणाओं के अंतर्गत आप मार्गणा नाम की प्ररूपणा पर चल रहे हैं और मार्गणा के 14 भेद हैं। 14 भेदों में से गति मार्गणा का अध्ययन पूरा हुआ है। इंद्री मार्गणा के कल 2 गाथाएं आपने पढ़ी हैं, आज तीसरी गाथा में चलते हैं। इंद्री का मतलब ही है जो अहमिंद्र देवों के समान एक दूसरे की अपेक्षा नार रख कर हर इंद्रिय अपने आप में अपने को स्वतंत्र अहमिंद्र के समान महसूस करती है, वह इंद्रिय संज्ञा को प्राप्त होती हैं। तो गाथा नंबर 55 पर आइए, पेज नंबर 63। ए इंद्रियस्य पुषणम्
यस्य पुषणम्
एकं व्यहोदिशेष जीवाणम्
एकं व्यहोदिशेष जीवाणम्
होन्तिकम् उड्डियायिम्
होन्तिकम् उड्डियायिम्
जिह्वाघाणच्छिसोतायिम्
जिह्वाघाणच्छिसोतायिम्।
सामूहिक गाथा पढ़िएगा।
ए इंद्रियस्य पुषणम् एकं व्यहोदिशेष जीवाणम् होन्तिकम् उड्डियायिम् जिह्वाघाणच्छिसोतायिम्।
एकेन्द्रियस्य स्पर्शनम् एकमपि च भवति शेष जीवानां भवन्ति क्रमवर्धितानि जिह्वा घ्राणाक्षि श्रोत्राणि। बहुत ही क्रम से चीजों को बताया है कि कोई साधारण स्वाध्याय करता भी इन बातों को समझ सके। माने एकेंद्री जीव के एक स्पर्शन इंद्रिय ही होती है, ये नहीं है कि एक इंद्री जीव है तो उसके कान हो जाए खाली एक इंद्री, नहीं, उनका क्रम है। जो एक इंद्री जीव है उनके एक स्पर्शन इंद्रिय ही होती है, शेष जीवों के क्रम से एक एक जिह्वा घ्राण चक्षु और श्रोत्र बढ़ जाते हैं। माने एक इंद्री जीव के केवल एक स्पर्शन इंद्रिय, 2 इंद्री जीव के स्पर्शन और रसना इंद्रिय, 3 इंद्री जीव के स्पर्शन रसना और घ्राण इंद्रिय, 4 इंद्री जीव के स्पर्शन रसना घ्राण और चक्षु, और 5 इंद्री जीव के स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और श्रोत्र। ये 5 ही इंद्रियां होती हैं। इसलिए कोई भ्रम ना रह जाए, कोई संदेह ना रह जाए, इस कारण इस गाथा को आचार्य देव ने कहा कि आपको यही जानना है कि जिस प्रकार से इंद्रियां बढ़ती हैं तो उनके क्रम क्रम से उनके कार्य क्या हैं, उन चीजों को जाना गया है। अब बताते हैं इंद्रियों का आकार, कौन सी इंद्री का क्या आकार है। देखिएगा, आप सबके पास में 5 इंद्रियां हैं, उनके आकार के बारे में आचार्य देव बताते हैं। चक्षु सोदम घाणम
चक्षु सोदम घाणम
जिह्वायारम मसूर जवनाली
जिह्वायारम मसूर जवनाली
अतिमुत्त खुरप समम
अतिमुत्त खुरप समम
आसम त्वणेय संठाणम
आसम त्वणेय संठाणम।
सामूहिक गाथा पढ़िए।
चक्षु सोदम घाणम जिह्वायारम मसूर जवनाली अतिमुत्त खुरप समम फासम त्वणेय संठाणम।
अब इसमें बताया कि चक्षु श्रोत्र घ्राण जिह्वा कारम मयूर यवनाल्या अर्थात मसूर के समान चक्षु इंद्री का आकार है। चक्षु इंद्रिय जो आप अपने अपने चक्षु को देख रहे हैं, ये तो खिड़की है, और जैसे आप खिड़की का दरवाजा बंद करते हैं आँख बंद हो जाती है। इसके अंदर मसूर के समान जो गोल गोल एक आकार होता है वह वास्तव में चक्षु इंद्री का आकार है। कभी कभी आपने देखा होगा कि जब मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है तो खड़े होकर कई बार मैंने देखा कि उसमें से क्या निकालते हैं, तो उसके अंदर से बिल्कुल जो चीज निकाली तो बिल्कुल मसूर के आकार का छोटा सा द्रव्य होता है, और वो जब पक जाता है यानी खराब हो जाता है तो उससे आँख की रोशनी ढक जाती है, आँख की रोशनी दब जाती है, इसीलिए उसको निकाल करके और उसके अंदर एक छोटा सा लेंस फिट कर देते हैं, और जिनको कम दिखाई देता है या जिनको मोतियाबिंद हुआ है उनको दिखने लग जाता है। यानी असली आकार चक्षु इंद्री का है मसूर के समान। मसूर की दाल आप खाते हैं ना, मसूर जो साबुत पूरा पूरा होता है छोटा सा, तो ब्राउन कलर का, ये गोल गोल आकार जो है यही चक्षु इंद्री का आकार है। और जब की नाली के समान स्रोत्र का आकार है। जब शरीर विज्ञान को आप पढ़ते हैं तो एक एक शरीर के अवयव को जब दिखाते हैं तो कान का आकार जो है वो बाहर का आकार, बाहर के आकार की बजाय जो अंदर का छोटा आकार होता है उसको जौ की नाली, जो जौ खाने का पदार्थ जो गेहूं की तरह से जौ होता है उसकी नली के समान स्रोत्र का आकार बताया गया है। और घ्राण का आकार माने कौन सी इंद्री, घ्राण इंद्री। घ्राण इंद्रिय जो है वह तिल के फूल के समान, तिल का फूल देखा है, तिल जहां आजकल सर्दी के दिन है तिल खूब खाते हैं, लेकिन तिल जहां उगता है जिस पेड़ से निकलता है उस पेड़ के फूल का आकार जो होता है वो तिल के फूल के समान घ्राण इंद्री का आकार होता है, और खुरपा के समान जिह्वा का आकार होता है, और स्पर्शन इंद्री के अनेक प्रकार के आकार बताए हैं, शरीरों के भी आकार और स्पर्शन इंद्री के धारण करने वाले जीवों के, तो बहुत सारे तरह के उनके आकार होते हैं जो शरीर के आकार होते हैं। यह आपको बताया चक्षु श्रोत्र घ्राण जिह्वा कारम मसूर यव नाल्यः अति मुक्त क्षुर प्रसमम स्पर्शनम तु अनेक संस्थानम। तो इन आकारों को भी आपको ध्यान में रखना है कि पांचों इंद्रियों के आकार अलग अलग हैं। खुरपे के समान जिह्वा इंद्री है, यानी एक एक इंद्री का किस प्रकार से आकार है उसे कैसे सदुपयोग करना ये अपने को जानना। भाई आंखें हैं, आंखें से चाहे तो आप रात दिन पिक्चर देख सकते हैं, अश्लील चित्रों को देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, सीरियल देखते हैं, और एक मंदिर में भगवान की प्रतिमा देखी जाती है। अरे इन आंखों का सदुपयोग वास्तव में किसने किया, सौधर्म इंद्र ने, जिसने भगवान के रूप को निहारते निहारते अपनी आंखों को धन्य कर लिया, और दो आंखों से भी नहीं निहार सका तो उसने 1000 नेत्र बना लिए। हे प्रभु आपके रूप पर तो आंखें ही नहीं टिकती हैं, मैं 1000 नेत्रों से भी आपको देख रहा हूं तो भी आपके अप्रतिम सौंदर्य को निहार करके मन नहीं भरता, इसलिए इंद्र का नाम है सहस्राक्ष। सहस्राक्ष माने आंख, 1000 आंखों वाले इंद्र को सहस्राक्ष नाम से भी कह दिया है। तो एक एक इंद्रियां अपने अपने स्थान पर फिट है, और ये ओरिजिनल आपके नाम कर्मादि के उदय से इन इंद्रियों का निर्माण हुआ है, इन इंद्रियों की रचना हुई है, और कहीं पर भी ऐसा नहीं हुआ कि आंखों को इन स्थानों पर जहां आंखें हैं कहीं पीछे लगा दें, सिर को कहीं नीचे कर दें। तो ये जो जिसका आकार है उसके अनुसार उस जीव के शरीर में वहां वहां पर इन इंद्रियों को बिल्कुल कर्मों ने फिट किया है। ये सृष्टि की व्यवस्था है, और सृष्टि में हम सबने मनुष्य गति में जो जन्म लिया है अपनी पांचों इंद्रियों को प्राप्त करके और उनका हमेशा सदुपयोग करना है। देखो इंद्री के संदर्भ में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हर इंद्री तो एक एक काम करती है, लेकिन रसना इंद्रिय दो काम करती है, खाने का भी और बोलने का भी। और अगर देखो आप तो सबसे ज्यादा अनर्थ या तो खाने में है या बोलने में है। खाने में व्यक्ति भक्ष भक्ष का ध्यान नहीं रखता और इंद्रिय लोलुपता के कारण अपने कर्म का बंद करता रहता है। एक इंद्रिय लोलुपी रहा शुभम चक्रवर्ती, जिसको फल अच्छा लग गया मायावी देव के द्वारा लाए हुए, तो इतना जीवा इंद्रिय के बस में हो गया कि वो उसके मायावी देव के साथ चल पड़ा। उसके सब मंत्री वगैरह रोक रहे थे, आप अकेले आपको ही ले जाना चाहता है, कोई खतरा है, आप मत जाइए। लेकिन उसने कहा राजा ने, मैं तो जाऊंगा। और गया तो उसको क्या अनुभव आया, समुद्र के अंदर उस देवता ने अपने रूप को प्रकट करके और उसे डुबो दिया। यानी उसके द्वारा पहले तो नमोकार महामंत्र का अपमान कराया, जिससे उस देवता की शक्ति जागृत हुई और फिर उसने डुबा दिया और शुभम चक्रवर्ती मर करके सातवें नरक में चला गया। कहा राजा छह खंड का अधिपति, और कहा वो नरक में चला गया। क्यों चला गया? नंबर एक, नमोकार महामंत्र का अपमान किया, अभिनय किया। नंबर दो, जिह्वा इंद्री की लोलुपता उसको नरक में ले जा करके पटक देती है। तो ऐसे उस जिह्वा इंद्री से चाहे तो रूखा सूखा नीरस भोजन करके और अपनी तपस्या से रिद्धि को प्राप्त करके जो महामुनिराज होते हैं, वे दूसरों को किस तरह से लाभ प्राप्त करा देते हैं, और चाहे तो भक्ष भक्ष सब कुछ खाते हुए उस जिह्वा इंद्री का दुरुपयोग करके और नरक में भी जा सकते हैं। तो ये तो खाने का दुष्फल हुआ, और बोलने का दुष्फल तो सुबह से शाम तक आप देखते होंगे कि जिह्वा इंद्री जो बोलने का काम करती है, चाहे तो उससे बोल करके हम किसी को भी मित्र बना सकते हैं, बड़ा भारी झगड़ा हो रहा हो, दुश्मनी हो रही हो और जरा सा कोई अच्छा शब्द बोल दिया कि परस्पर में मैत्री हो जाती है, और अच्छे भले मैत्री के भावों से बैठे हैं और जरा सा एक फुलिंगा डाल दिया और वहीं सब के सब फट जाते हैं, कट जाते हैं, आपस में दुश्मनी हो जाती है। तो ये बोलने का यानी रसना इंद्रिय की बोलने रूप उपयोग की दुरुपयोगिता जानना चाहिए। तो ऐसे एक इंद्रिय दो कार्य करती है और उसके सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों चीजों को बताया गया है। तो हमें क्या करना है? सदुपयोग करना है, अपनी रसना इंद्री से भगवान के भजन करना है, दूसरों के परोपकार के शब्दों को बोलना है, जो किसी के हित के लिए हो ऐसे वचन बोलना है, और किसी को गाली नहीं देना है, अपनी जिह्वा इंद्री को खराब नहीं करना है, उसमें रोग ना उत्पन्न होने पाए। एक एक इंद्री संबंधी न जाने कितने रोग हैं, जब मैं किसी दिन आपको बताऊंगी तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि कुल मिलाकर के जो 5,68,99,584 रोग एक शरीर के अंदर होते हैं और वो नरक के अंदर सारे रोग उदय में आते हैं। तो इन रोगों में जिह्वा इंद्री में कितने रोग हो सकते हैं, चक्षु इंद्री में अधिक से अधिक कितने रोग हो सकते हैं, ये सब डिटेल जब आप जानेंगे तो आपको लगेगा कि हे भगवान, मुझे तो हर क्षण अपनी इंद्री का सदुपयोग करना है। तो ऐसे गोमट सार जीव कांड के अंदर इस इंद्रिय मार्गना का निरूपण करते हुए आज आपने इंद्रियों की वृद्धि का क्रम जाना कि स्पर्शन इंद्री वाले के एक इंद्री जीव के केवल स्पर्शन इंद्री, ऐसे दो से लेकर पांच इंद्री तक के जीवों की एक एक इंद्रियां और क्रम से बढ़ती चली जाती हैं, और इंद्रियों का आकार जान करके उन आकारों की ओर नहीं उनके कार्यों की ओर हमें जाना है। इंद्रियों के बस में हमें नहीं होना है, इंद्रियों को अपने बस में करना है। तो इस प्रकार से यह गोमट सार जीव कांड नाम के ग्रंथ में स्वाध्याय करते हुए आपने जाना है कि और इंद्रियां द्रव इंद्री और भाव इंद्री दो प्रकार की भी होती हैं। जब भाव इंद्री का क्षयोपशम होता है तभी द्रव इंद्रियां पूरी तरह से कार्य करके और अपने कार्य को संपादित करती हैं। तो इसलिए जो जो इंद्री के स्थान पर अपने अपने आवरण कर्म के क्षयोपशम रूप कारमान पुद्गल स्कंद से युक्त आत्मा के प्रदेशों का जो आकार बनता है उसको आभ्यंतर निवृत्ति कहते हैं, बाह्य निवृत्ति और आभ्यंतर निवृत्ति। निवृत्ति माने निर्माण रचना। तो आभ्यंतर निवृत्ति का जब कर्म का क्षयोपशम होता है और उसके निमित्त से आत्मा के प्रदेशों का जो आकार बन जाता है उसको कहते हैं आभ्यंतर निवृत्ति। और स्पर्शन इंद्रिय की आभ्यंतर निवृत्ति भी भिन्न भिन्न प्रकार की हुआ करती है। तो गाथा के अंदर एक एक शब्द का अर्थ जानने के लिए बताया कि जो इसके अंदर तू शब्द है ये उपलक्षण होने से सूचित करता है कि आभ्यंतर निवृत्ति तथा बाह्य आभ्यंतर उपकरणों का भी स्वरूप यहाँ आगम के अनुसार समझ लेना चाहिए। तो आपको जो बाह्य इंद्रियां दिख रही विशेष रूप से जैसे चक्षु इंद्रिय है, तो चक्षु इंद्रिय इसका ये बाहर का आकार है और बाहर के आकार में ये जो पलक हैं, ये खिड़की आंखों की सुरक्षा के लिए, अगर सारा दिन आंखें खुली रहें तो आपकी आंखें जो हैं खराब हो सकती हैं। इसलिए प्रकृति ने जहां आपको इंद्रियां दी हैं वहीं ये बताया कि समय समय पर उनका सदुपयोग करना। सोने के समय आंखों को बंद करना मतलब क्या है, आंखें बंद इसलिए होती हैं कि आपकी आंखों की सुरक्षा हो जाए, थोड़ी देर तक आंखों को एनर्जी मिल जाती है। तो ऐसे करके जब जब आंखें थकें तो प्रभु की भक्ति करते हुए अपनी आंखों को अंदर की ओर निहारने के लिए नासाग्र दृष्टि कर लें। निद्रा के समय पूर्ण रूप से बंद कर लें ताकि आपकी बैटरी चार्ज होती रहे और हर इंद्रिय अपने कार्य में सफलता को प्राप्त करती रहे। तो ये आज के गोमटसार जीव कांड का स्वाध्याय हुआ। अब मैं आपको ले चलती हूँ